then वे मनःकल्पित पथ के द्वारा उसको नहीं ला सकते, उसे पतन हो जाता है। ये भक्ति में साथी जो हम लोगों को पा रहे हैं उसके अनुसार में भजन करते करते भावावस्था में भगवत कृपा से, वैष्णव की कृपा से वह अपने आप आएगा। इसलिए हम लोग वृत्ति के लिए अधिक चेष्टा करेंगे कि कृष्ण को यदि हम भगवान मानते हैं तो भगवान सत्य संकल्प होते हैं, जो कुछ संकल्प करेंगे जरूर हो जाएगा, इच्छा करने के मात्र से ही उसको काम हो जाएगा। कृष्ण ने इच्छा की, वो गए संधि कराने के लिए हस्तिनापुर में और उनकी बात कौरवों ने नहीं मानी और लोग बैरन लौट आए और युद्ध हो गया, उसमें सबका करना है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं उनकी इच्छा के सहित गए, चेष्टा भी की और नहीं हुआ, तो सर ये तो सफलता का लक्षण नहीं है। किंतु बात जैसा लोग सोचते हैं ऐसी नहीं, क्यों? किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, एक अंतरंग और दूसरा होता है परिणाम। कृष्ण जब संधि कराने के लिए चले, संधि कराने के लिए गए, जब जगत में उनका आविर्भाव हुआ तभी उन्होंने संकल्प कर लिया भक्ति विरोधी दैत्य दानवों को हमको संघात करके पृथ्वी का आविष्कार करके धर्म की प्रतिष्ठा, ये संकल्प। इसलिए महाभारत का युद्ध होगा, शत्रुओं का विनाश हम करेंगे, महाभारत का युद्ध होगा, साल का और सब लोगों के साथ में उनका युद्ध शिष्यपाल इत्यादि का वध करने के लिए वो आए हैं, ये संकल्प उनका पहले से ही। इसलिए जिस समय में वो जा रहे थे हस्तिनापुर तो द्रौपदी से मिलने के लिए गए तो द्रौपदी रो उठी और बोली गई, मेरे सखा जब आप जा रहे हैं तो और इच्छा करके जा रहे हैं पूरा नामा हो तो ये हो ही जाएगा, जरूर होगा, आप जब चाहते हैं आपके चाहने से ही होगा, फिर मेरा क्या होगा? हमने जो प्रतिज्ञा की है, भीम ने जो प्रतिज्ञा की है, ये सब प्रतिज्ञाओं का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा की है ये दुष्ट दोष आत्मा की भुजा उखाड़ कर उसके ताजे रक्त से अपने केस को बांधू, नहीं तो हमारा केस खुला रहेगा। और भीम ने क्या प्रतिज्ञा की है? दुष्ट दुर्योधन का जंघा तोड़ूंगा। ऐसे ऐसे सब प्रतिज्ञाएं हैं तो आप तो जा रहे हैं, जब कोई हम लोगों की प्रतिज्ञा नहीं रहेगी, मां बाप युद्ध नहीं होगा। कृष्ण ने कहा तुम्हारा संकल्प और मेरा संकल्प ठीक है, उसे अकेले में गोपी में उठने जा रहा हूँ, ये माँ बाप को युद्ध होगा, हम ऊपर से बहिरंग रूप में जगत को साधारण लोगों को जो धर्म के गंभीर विषय जो नहीं जानते ऐसे लोगों को संतुष्ट रखने के लिए उनकी प्रतीति के लिए मैं जा रहा हूँ, असल में युद्ध बंद करने के लिए भी जा रहा हूँ, युद्ध आरंभ कराने के लिए युद्ध होगा तुम्हारे पहले दूसरों को मत बतलाना, तुम समझ रहे हो। इसलिए महाभारत यदि नहीं होता तो धर्म की रक्षा नहीं होती, क्यों? जितने दुष्ट और टूटे शरीर को मैं मानकर और उसी में आसक्त कराकर शरीर के सुख के लिए सब कुछ करते थे, यहां तक कि दूसरों के प्रति अत्याचार अनाचार जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक सत्य धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी, विशेष करके आत्मधर्म की नहीं होगी और प्रेम धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी। इसलिए ऐसे असुरों का विनाश आओ, इसलिए इनको तो मरवाया नहीं। द्वारकापुरी में भी जो लोग धर्म विरोधी थे वहां से रह करके असुरों का विनाश किया, वहीं से आकर के उन्होंने दंत बकरी इत्यादि का, साल्व का, चौधरी वासुदेव का, मैदानों के कौन कालजवन के लाखों करोड़ अतुष सेना को, जरासंध के 18,000 करोड़ों की महाभारत जैसा वो पूरा सैन्य लेकर के आता था और उसका एक भी आदमी नहीं बचता था कि वही नहीं बचता था। इसलिए 18,000 इसलिए जब तक ये असुर लोग रहेंगे इस आत्मधर्म की प्रेम धर्म की यही जा सकता, इस देश में कहीं भी संदेह न हो ये कृष्ण की ये बात झूठी, ये सत्य संकल्प नहीं। दूसरी बात एक और क्या मैंने कहा था, दशरथ के वध के समय और कर्ण के वध के समय, द्रोणाचार्य के वध के समय कृष्ण ने धोखा दिया लोगों और झूठ बोलवाया। द्रोणाचार्य के वध के समय में क्या हुआ, जो पूर्वक जो ऋषि जी से कहा कहलवाया और वो नहीं माने तो कहा जैसा तुम्हारी इच्छा है वही कहो, देखो ये हाथी मारा गया अश्वत्थामा नाम का, नहीं तो कहा भी मारो और मारा
खाना खाना हाथी को
मरवाया, खान खा एक हाथी को मरवाया और उसे कहा कि अब कहो जैसे मारा गया, तो हम ये नहीं कहेंगे अफसाद खामा मर, अफसाद खामा मारा गया, हाथी मार गया, ये कहेंगे तो जो भी इच्छा उसको कृष्ण की पूरी बात नहीं मानी। कृष्ण गुरु है, उनकी भी बात को आज भी मानने से उनकी क्या दशा हुई, जब ये आधी बात कही कि अफसाद खामा मारा गया और किंतु जो उसी समय पांच जन्म शंख बजाया और अर्जुन इत्यादि ने शंख बजाया, शंख की आवाज में उनका बोलना वो नहीं सुनाई पड़ा और वो द्रोणाचार्य ने उन्होंने समाधि लगाई और आत्मा को। इसमें मालूम होता है कि कृष्ण ने झूठ बुलवाया और असत्य कार्य कराया, ऐसा मत समझ। क्यों, द्रोणाचार्य भी साधारण व्यक्ति नहीं थे, जान बुझ करके कृष्ण की इच्छा की वृद्धि के लिए दुर्योधन का पक्ष लिया था कि और भीष्म पितामह जी ये सब सभ्य लोग, यदि ये लोग दुर्योधन के पक्ष से खड़े नहीं होते तो ये सारे दोष मरते हैं, निर्भर करके दुर्योधन ने जीत लिया, इसलिए वो जब नहीं होते तो अब आज युद्ध ही नहीं होता। इसलिए कृष्ण की इच्छा के लिए इन लोगों ने उनके तरफ से लड़ा, इसलिए कृष्ण महात्मा द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बड़े कर्तव्य परिज्ञ है, उत्तम अधिकारी है, अर्जुन की शक्त में अंदर से चाहते थे कि अर्जुन की विजय हो, उनको वरदान दिया इसके, इसलिए कृष्ण की यदि किसी को धोखा देना नहीं। क्यों, अर्जुन के मुख में उन्होंने अपने मुख में विश्व रूप में उन्होंने दिखलाया, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा ये कृपाचार्य जैसे लोग हैं जो मरने वाले नहीं है, अमर हैं, भीष्म पितामह इत्यादि सब मरे हुए थे, कोई भी जीवित नहीं, उनके दांतों तले में सब मुख में चले जा रहे हैं, सबको मरा हुआ देखा, इसलिए कहा ये तो मरे हुए हैं अब निमित्त मर, इसलिए अश्वत्थामा मारा गया है, ये झूठ बात नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज जी को यह समझ में नहीं आया, कृष्ण ने योग माया के द्वारा उनके ज्ञान को अच्छा कर और दिखलाया कि इसकी फायने कर लेती है, उतारा आकाश नीचे उतर आया और नरक भी देखना पड़ा। शिष्य की बात मानी किंतु अभी अर्थकों को दे न्याय मानी पूरी नहीं मानी इसलिए उनकी ये प्रकार। इसलिए गुरु के बात में कभी विश्वास मत करो। यदि कृष्ण जैसे सदगुरु हो, हम लोगों के वैष्णव आचार्य जो महापुरुष से लेकर के प्रभुपाद और हमारे गुरुपाद पर इनमें किसी की बात में कहीं भी मत संदेह में संदेह। श्रीमद भागवत और गीता के सिद्धांतों में किसी प्रकार का मत रखो संदेह। आंख बंद करके इस पर चलते हैं कि इसी को भागवत करते हैं, तो उसमें तेजी से दौड़ो या पैर भी कहीं टूटा टूटा भी गिर गया तो आदमी वो गिर नहीं सकता है। यदि एक क्रम को छोड़कर के पैर दूसरी जगह भी चला जाए हवन मिली लेने से मिली लेने से मैंने क्या आंख बंद करके मैंने क्या आप बंद करने का तात्पर्य क्या एक स्टेप की भक्ति के एक अंग की उपेक्षा भी कर सकते। यदि कोई नाम संकीर्तन कर रहा है वो आचरण नहीं करता ये उपेक्षा हुई उसको उल्लंघन करके भी आगे चला जाता है ये पतित नहीं होता। भक्ति के चौथा अंग है उसमें से किसी अंग को छोड़ देता है जो भक्ति भावमय होता है भाव संबंधी होता है उसको वो ग्रहण करते हैं और वो छोड़ देते। इसलिए कोई कोई हरिदास ठाकुर अर्चन करते हुए नहीं सुना गया, हरिकथा प्रवचन करते हुए नहीं सुना गया, किंतु सब तत्वों को जानने लगे हैं। हरि नाम करने से तार मध्य तम से नाम समझे नाम ले जाए पाए प्रेम हे कृष्ण नाम की इतनी महिमा है। किंतु यदि अपराध उठे हस्ती माता ऐसे जो प्रभावशाली नाम है यदि अपराध हुआ अनर्थ रहा तो जितना भी मन से तुम निष्ठा करके चलो मन चंचल रहेगा। इसलिए इन सब चीजों को विचार करें। इसलिए ऐसे हम लोगों को चलना है जिसे किसी स्थिर रख करके हम वैकल्पिक रूप में भजन कर सकें और किसी जन्म में ही अनर्थों को दूर करके संबंध ज्ञान के साथ बड़े प्रेम के साथ हरिनाम करते हुए भजन कर। ऐसे गुरु को ही हमको ग्रहण करना है। हमको ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है जो वैभव में डूबे हुए हैं, भजन करने का समय नहीं अवकाश नहीं, एक माला धारण करने के भी अवकाश नहीं है, गुरु मंत्र करने का भी अवकाश नहीं है। इसके गुरु स्थिर करके उससे क्या हुई। इसलिए शुद्ध गुरु का पदाश्रय करके उनकी इच्छा में इच्छा मिला तो उसके अनुगत्य में चित्त से भजन यदि करें हमारा संस्थान। इसलिए कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं सब ऐसी गुरु गृह में गए शांति जिन्होंने सही वो किंतु उनकी पत्नी के आदेश को कैसे पालन किया भगवान होकर उनकी सब लीलाएं बड़ी गंभीर है। इसको जितना ही विचार करें विचार कर ले चित्ते किंतु कैसे खूब श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ में कृष्ण नाम को अपराधिक समझकर गुरु को भी अपराधिक तत्व समझकर कृष्ण का परिकर समझकर चले सौ सहज सवन रूप में बिना प्रयास के ही शुद्धा भक्ति हृदय में आविर्भूत हो जाएगा। कृष्ण तत्व अपने आविर्भूत हो जाएगा, विशेष परिश्रम नहीं करना किसी लिए बचना है। जस देवी पराभक्ति तथा देवी तथा गुरु प्रत्यक्ष अर्थात प्रकाशन से भक्ति को स्वतंत्र शक्ति विशिष्ट उनको पर्सनैलिटी समझो पर्सन समझो व्यक्तित्व वो जिस पर कृपा करना चाहती है उसको स्वतंत्र होकर के कृपा करती है। जहाँ कहीं देखिए जहाँ ये वही से मिलते भक्ति देवी हमारी शुद्ध अवस्था दे करके पवित्र हृदय की भावना समझ करके अपने आप हृदय सत्य पुण्य। इसलिए कृष्ण सत्य ही सर्वोत्तम सत्य परम दयालु है। वो दयालु होकर के जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए है। इसके संबंध में हम लोगों ने बहुत कहा है। अभी बहुत से विषय बोलेंगे और जिनको दिल्ली जाना है that करना समाप्त हो गया है। बेटे का साक्षात पर के लिए उन्होंने समाप्त किया। इसके पहले भी डेथ का प्रति गई पहले मुझे बताया उन्होंने बताया लक्ष्मी जी का वर्ष उठाते हैं क्योंकि चरण में सब समय सेवा करते हैं तो सभी लक्ष्मियों की जो पद्म बंधा है ये और दूसरी स्त्रियों की बताती है क्योंकि गोपियों को कृष्ण का अभाव प्रसाद दिया जो लक्ष्मी इत्यादि को नहीं मिलती और आप कुछ समय कृष्ण के गले में हाथ देकर लब्धार्थी का दूसरे हाथ देते और उन लोगों आर्थिक गोपियों का आर्थिक दिया वह अधिक प्राप्त हुआ जब उस गाय प्रदर्शन करेंगे और किसी को वह प्राप्त नहीं हुआ इसलिए गोपियों की सबसे सुमन्ना उन्होंने यहाँ पर इसके बाद में वो पढ़ रहे हैं आता मयो चरण चंद रेण पिता महन चंद्रिंदावने जातु सजन सजन आदि प्रथम के हिस्सा दे दी मकुंद पढ़ी और गोपियों की महिमा बदला और भी अभी कुछ विशेष बातें यहाँ पर बतला रहे पहले हमने जो बतलाया सेवा स्त्रियों कहा ये परिचरित गोपियां और कृष्ण ने कहा परमात्मा रूप भाव रूप भाव ये कृष्ण की अद्भुत महिमा है जो विचारी व्यक्ति भी यदि उनका भजन करे तो स्वयं उनका कल्याण हो जाता है। पैसा भी कर ये कृष्ण का यहाँ पर दिख रहा है किंतु जब छात्र का बात नहीं है हमने इसको बताया कैसे गोपियों की महिमा और पैसा नहीं क्या गोपियों की महिमा यहाँ पर बदला वो व्यभिचार पूछता और परिचित है क्या है इसके लिए यहाँ पर ये परिचरी और व्यभिचार पूछता किसके लिए कहा गया किसके लिए कहा गया इसका विशेषण है तो बदलाव कहाँ गोपी व्यभिचारी यहाँ पर परिचरी व्यभिचार पूछता है और परिचरी बताया ये किसके लिए किस का विशेषण कहाँ बताएगा तो लोग किसके लिए कहे करते हो आगे बढ़ते आइए तो आप सोलपान बना के आना सब किसे रहते और कहा मैं और संसार के दुष्ट स्त्रियां जो अपने को पति प्रताप समझती हैं वो व्यभिचारी हैं और परमचारी मैंने धर्म से कोई संबंध नहीं ऐसी अरे गोपियों की तो बात क्या नमित करो अनुभजते, ऐसे कृष्ण का यदि कोई अभिदूषा लोग व्यक्ति भी अज्ञानी आदि भी न जानते हुए भी अमृत का सेवन करे, मंत्र का सेवन करे, तो उसका कल्याण भी होगा, फिर कृष्ण का सेवन करेगा नहीं होगा, जरूर होगा। आसाम हो चरण दुखाम वृंदावन एक मजबूत आदि गोपियों ने अपने थोड़ा नहीं जाता, ऐसे अपने स्वजनों को, बंधु बांधवों को, पति और आज्ञापक को धर्म इत्यादि को छोड़कर जो लिखेगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ नहीं गया, वो लिखने पर जा रहा है इसलिए समझ ही नहीं गया, लाख लिख ले मन एक है उभव मन न भयो, समझ करके फिर कोई थोड़ा सा नोट कर ले दूसरी बार, आप जितने बोल रहे हैं तो जो एक लिखेगा बाकी सब हवा में उड़ जाएगा। जिन गोपियों ने शुद्ध अपने स्वजनों को, पति बंधु बांधव और आद्य पक्षों को छोड़कर जिनको श्रुतियां खोज रही हैं, ऐसे गोविंद की पत्नी को की भजना की है। वृंदावन में उन्हीं गोपियों के चरण धूलि का सेवन करने के लिए लता गुरु में से किसी एक से भी मेरा जन्म हो जाए, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं या प्रार्थना करता हूं। ये उदी कर रहे हैं उन गोपियों के चरण धूलि की सेवा करने के लिए मैं गुरु लता विशेष करके छोटी छोटी भाषण को जिन पर वो गोपियां चले भजन करने वाला व्यक्ति इन भावों को अपने मन में चिंतन करेगा, इसका नाम है भजन। यहाँ डर के नारे बैठते हैं जब आ गया और जहां यहाँ से हटा तक भूल गए और सारी चिंता आ गई, ये भजन यहाँ पर जो कहा उसको फिर से चिंतन किया क्या क्या हुआ उन सब अर्थों को लेकर के विचार करें, ऐसे ही हमारे हृदय में प्रार्थना जरूरी हो तो ये भजन काम हो गया। पिछले सनातन दुर्गा मैंने पिता करके विचार संघर्ष करते हुए हम लोगों को भाव इन सब के लिए पहले प्रदेश कांग्रेस के जितने लोग हैं भाई उनका अनुशीलन करो, इंदिरा जो अनुकूल है ज्ञान अनुकूल को क्या अनाथ जहां जितना दुख होता जाएगा ये समझ में आएगा, और अनाथ व्यक्त में दूसरों के दोष ठीक करेंगे तब तक भक्ति से कोई संबंध नहीं, दूसरों का दोष मत देखो अपने की तरफ में देखो, जो हमारी रुचि नहीं हो रही है इतना समझाने पर भी समझ भी नहीं जा रहा, अपने तरफ में देखो। अभ्याचार जी कर रहे हैं सनातन गोस्वा जी कर रहे हैं गोपियों का कौन ऊंचा भाव, गोपियों का कृष्ण के प्रति भाव देखा, क्या भाव देखा गोपियों ने पूछा कि तुम कृष्ण के निश्चित रूप में ही कोई सेवक है, हमारे नाम सुगंध लेकर के समझ लीजिए क्योंकि ऐसा सुगंध किसी में नहीं होगा, हमारे जो कपड़े इत्यादि जो धारण किए हुए ये श्री का है, इसलिए हम लोग गलत हमारे यहाँ नहीं कर सकते, सुगंध से समझिए। अच्छा ये बतलाओ ऊषा, जो कृषि ये होती है दो प्रकार की, निस्वार्थ प्रकृति यहाँ होती है स्वाभाविक की, वो कभी टूटती नहीं जितना भी कोई कारण हो, कुछ भी कारण हो, प्रति टूटने का लाख कारण उपस्थित होने पर जब प्रति नहीं टूटती तो ये महिला जो प्रति अपना साथ मिल जाने के बाद में बिक जाती है वो लौकिक प्रति वो यथार्थ प्रति है। अब इसी को गुरु में और वैष्णव में भी लगा लें, जो अभी शिष्य हैं गुरु और वैष्णव से अपना जब तक स्वार्थ कुछ है तब तक तो लौकिक स्वार्थ में रहें, और जहां वो दूर हो गया तो प्रीति टूट गई। और जिस शिष्य का निस्वार्थ कृष्ण प्रेम पाने के लिए संबंध है गुरु से, आत्मा और अपने जीवात्मा का और गुरु के रूप से, उसके प्रति लाख टूटने के कारण होने पर वो प्रीति नहीं मुझे ही पड़नी चाहिए। तो जब देखो भवर आकृति करता है पूर्ण से, बार बार उसी के ऊपर में मर आता है, आज जहां उसका रस ले लिया उठ करके दूसरी जगह चला गया। यदि नहीं देखा जा कि ये अच्छा पुष्प है या खराब पुष्प है, अच्छे को छोड़ करके पूरे कर दिया स्वास्थ्य है, और जब रस ले लेता है उसमें रस नहीं होता तो उसे कोई स्थिति नहीं। देखा का पुरुषों से तभी तक संबंध जब तक पैसे का है, फिर पैसा नहीं मिलेगा संबंध छूट गया। फिर ये का वृक्ष से तभी तक संबंध है जब तक वृक्ष हरा भरा फलदायक है, यदि वह सूख गया जल गया कोई संबंध नहीं। ये सब प्रति स्वार्थ में चंचला ये प्रति में हम लोग की प्रति कृष्ण के साथ और हम कृष्ण का मूल से निस्वार्थ प्रति हुई, फिर टूट कैसे गई ये बतलाओ। उद्धव जी खूब ताकते रह गए थे, कभी टूट ही नहीं सकती। कई शास्त्रों में पुराणों में वेदों में ऐसा है कि निस्वार्थ प्रीति होती है, निस्वार्थ रूप में गुरु और शिष्य का संबंध होता है वो कभी नहीं टूटता, वो स्रोत वृद्धि होती है। ये प्रीति कृष्ण के साथ में निस्वार्थ प्रीति थी, ये क्यों टूट गई उद्धव जी कुछ उत्तर नहीं देते। और इसके बाद में उद्धव जी की का जो संदेश गोपियों ने सुना उसे जीवित रहने की आशा भी समाप्त हो गई, अब कृष्ण नहीं आएंगे उन्होंने समझ लिया। अब तक खाना था रमन प्रश्न खाना प्रेरणा
आगमाना प्रेरणा था प्रेरणा प्रेरणा की हार।
इसके बाद में समुद्र समुद्र ब्रिटिंग नवा हमें इस दिव्य समुद्र से अब उद्धार हमारा कीजिए उपाय, ये कहकर के रोके। श्रीमद भागवत के शब्दों के ऊपर से मालूम पड़ता है कि गोपियां शांत हो गई और उनके उपदेश से उनको शांति मिल गई, सांत्वना मिल गई। उनको ऐसा गोपियों का दिवसगढ़ और अधिक बढ़ गया उस संदेश कृष्ण वाहिनी ने ही समझ लिया और जीवित रहने की आशा भी समाप्त हो गई, दुखित हो गई आधार पर। उसका जब इनका यह प्रेम देखा तो अपने को धिक्कार देने लगे कि कहां ये गोपियां कई मां स्त्रियों और कहां मैं, बहुत अपने को धिक्कार। हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम ही नहीं है, मैं समझता था कि मैं भक्त हूं, हमारी समझ ये आ रही है किसी भी भक्त की श्रेणी में मैं नहीं हूँ, प्रेमी भक्त की श्रेणी में अपनी त्रुटि नहीं समझे कि मैं ऐश्वर्य के रूप का भक्त हूँ। ये भगवत्ता का ज्ञान में रहता है इससे ये प्रेम नहीं आ रहा है इसको कि अभी तब तक नहीं समझे। इसलिए यहाँ पर कुछ प्रार्थना अलौकिक करना चाह रहे हैं सुगम तथा डॉक्टर मैं क्लास थिंकिंग हिमसेल्फ सो मच डिग्रेडेड एंड थिंकिंग गोपी द हाइएस्ट टॉप ऑफ प्रेम इन गोपी। Now he is thinking how to have a very glorious thing. कैसे हम क्या प्रार्थना करें गोपियों से, ये सोचकर कारण अत्यंत तेज से उल्लास से नहीं कहीं कहीं उल्लास में होता है यहाँ पर बड़े तेज से कारण महालक्ष्मी इस प्रकार बड़े सुंदरियों की प्रकार उन्होंने दिखलाई किसे श्लोक के द्वारा वृंदावन खंड है गोपियों के लिए गोविंद एवं अभिलाषण रूढ़ा वायन ब्रह्म जन्म भी गोपियों की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। धन्य है पृथ्वी जिसमें वृंदावन और पृथ्वी धन्य वृंदावन धन्य है जिसमें ये गोपियां कृष्ण के लिए कृष्ण जन्म के लिए धन्य नहीं करता
कुछ बता दिलोगे किसी भी धन्य जब से वृंदावन तथा भी गोपी का पात्र जब से महाविराम हो
अतएव सब जगह वृंदावन को धन्य माना गोपियों के लिए तो गोपियों की सर्वश्रेष्ठता मन ही मन में उपलब्धि कर इसलिए कृष्ण व्यक्त किए जो महाभाव है इनको देखकर सर्वोच्चतम भाव का विषय का वर्णन के द्वारा गोपियों के चरण की महिमा बतला रहे हैं कि मैं मुझे अंततः ये तो नहीं समझ में आया कि गोपी प्रेमी का नाम क्या नहीं तो मैं नहीं समझता मैं अपने को ही सबसे बड़ा समझ रहा हूं आज मैं समझा गोपियों और उनके चरण की महिमा में मैं ऐसा व्यक्ति इस भाव को और समझ रहा हूं कि अब कृष्ण प्रेम किसे कर गोपियों का प्रेम कितना ऊंचा है अब वो समझने लग गए उस संघ की महिमा। हम लोग संघ की महिमा नहीं समझते गुरु जी की कृपा है ऐसा समझिए। स्वामी जी जब तक थे भक्ति वेदांत और प्रभु का जब थे तो उनके संघ में कितने आदमी थे बड़े बड़े लोग एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं और बड़ी बड़ी सभाओं में दिग्विजय करता था भजन का हमारे ऐसे कितने सिद्धांति महाराज जी उनका कुछ पढ़े लिखे थे कितने निर्भीक वक्ता और साधन भजन कर रहे गुरु जी थे इसलिए हम लोग उनके साथ में थे अभी भी गुरु जी हैं इसलिए कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं और किसी भी मठ में जाओ देखो तो जुआ एक आदमी है कि चपली बजती है कि नहीं आती के समय में एक हाथ से ऐसे कर रहे हैं घंटा बजा रहे हैं और आपकी तरफ कोई दर्शन करने वाला भी इस संघ में कुछ सीखो चंद्र की महिमा ये बता रहे हैं। चंद्र की महिमा के द्वारा स्वयं प्रेम विषय से पूर्ण हो गया, लेकिन हृदय मत पूर्ण प्रेम विषय से परिपूर्ण होकर के आज एक दुर्लभ प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव चंद्र की महिमा से। यदि उद्धव जी ब्रज में नहीं आते तो आसान हो चरण रेणु शाम हम और जो प्रार्थनाएं हैं विरहेन में
महाभागा
विरहेन अनुग्रह किया आप लोगों ने, ये शब्द कभी बोल नहीं करते थे हम लोग, अपने गुरु जी की सेवा निष्कपट रूप में नहीं करते, प्राणों का बलिदान नहीं करते। तो ये सब जो बातें कह रहे हैं समझ रहे हैं, कभी भी नहीं समझता गांव में रहता साधारण रूप में, जैसे आदमी जन्म लेते हैं मर जाते हैं आहार में ग्रह है लेते हैं ऐसे भी नहीं मिला। ये समय समय की महिला गुरु जी के समय के प्रभाव से कहां एक निरक्षर व्यक्ति संसार में रखने पड़ने वाला आज जगत का गुरु बन रहा है, वो गुरु गुरु कहते हैं उनके गोचर प्रदेशों को पालन कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही यदि निष्कपट होकर के पालन करेंगे तो प्रार्थना दुर्गम सबसे बड़ी दुर्गम क्या प्रार्थना है, संसार में सारे सुख मिल जाए ये प्रार्थना है, स्वर्ग में सुख मिल जाए उससे भी बड़ा मुक्ति का सुख, उससे भी बड़ा बैकुंठ का कृष्ण नारायण की सेवा, उससे भी दुर्लभ रामचंद्र जी की सेवा, उससे भी दुर्लभ कृष्ण की द्वारा भी कृष्ण की सेवा सदभावना, उससे भी बढ़ करके ब्रजी ने साथ भी, उससे भी बढ़ करके सफा, उससे भी बढ़ करके बात, उससे भी यदि उसके लिए आकांक्षा हो रहा है महाप्रभु पंडित जितने भी वैष्णव आए हैं इसीलिए है। यदि ऐसी भावना नहीं उठती है और केवल सदाचार देख रहा है तो ये भजन नहीं, धर्म और धर्म दोनों को अलग कर दिया था, न धर्म न अधर्म, वो गौरव वैष्णव का प्रतिपाद चल रही है, कृष्ण प्रेम है समझो प्रेम। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं अर्थात चिरकाल कृष्ण सेवा के फल स्वरूप, मैंने कृष्ण की सारा जीवन कृष्ण की सेवा मैंने की अंतरंग रूप से रह करके आज उसी के वजह से गोपियों का संग मिल गया और गोपियों का संग मिल से हमारे हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न हो रही है प्रार्थना क्या आकाम हो इत्यादि के द्वारा तीन श्लोकों के द्वारा यह बोल रहे और मैं वृंदावन में उन गोपियों की चरण धूलि को सेवन करने वाले घास गुण और लता इनमें से कोई एक यदि जन्म ग्रहण कर सकूं तो हमारा परम सौभाग्य हो। गोपियां गोपी होने के लिए नहीं मांगा, ये मेरा सौभाग्य है, उनकी भूली हमारे सिर पर पड़ जाए इस प्रकार से कैसे आगे बढ़ना है। अर्थात वृंदावन में गोपियों के चरण रेणु को प्राप्त होने वाले घाट तीर्ण गुण जो तीर्ण की शोभा है दुख घाट इत्यादि में उनके कर्म के रूप में गुण की चेता है
छोटे छोटे पौधे
तो जीवन को काटने से सुख कैसे कर जाए उनको पूर्ण होता आदि लता इत्यादि तो जमीन से चल सके, यदि सहारा न मिले तो वो क्या जमीन में ही पड़ी रहे और यदि सहारा मिल गया वो क्या हो गया ऐसा नहीं क्या, इसलिए वृक्ष नहीं कहा, ऐसी लंबी लंबी ऊंची वाली लताएं नहीं कहा, जो गोपियों की धूली का सेवन करे कोई भी एक भाग प्रयोग इत्यादि घाट की तरह तरह की होती है, लाखों तरह की होती है। उनमें से कोई एक का जन्म लेने की मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए आप यहाँ पर फिर अहो उल्लास आ जाए, उल्लास के साथ में करें, वो क्यों विचार मुझे जरूर करने पर मुझे और सबके रास्ता सुना। उनके महात्म को आगे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, जातुष्ट जो सजन आज के पठन के हिस्सा भेजे मुकुंद पद दे। जो कि बड़ी कठिनता से त्याग किया जा सकता है, साधारण का त्याग किया जा सकता है। घर में स्त्री को त्याग करना सहज है, किंतु जहां पर रह रहे हैं वहां पर ही स्त्रियों का त्याग करो तो आनंद से बहुत से लोग स्त्रियों को छोड़ करके आ जाते हैं और आ करके त्याग करके भी आश्रम में जा करके भी स्त्रियों की तरफ में नजर रखते हैं, उनके प्रति आसक्ति आ जाती है। किसी के वस्तु में भी आसक्ति होना ही गई स्त्री का भाव, तो स्त्री का मैं ईश्वर नहीं क्यों, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति होना ही गई और अपने को भोक्ता और उस वस्तु को भोग्या समझ करके इस दृष्टि का नाम स्त्री दर्शन, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, स्त्रियों का भी किसी भी वस्तु के प्रति भोग्य भोक्ता का अभिमान अपने और उसमें भोग्या, पुरुष के प्रति हो, एक साड़ी के प्रति हो, खिलौने के प्रति हो, किसी वस्तु के प्रति हो, ये जो भोग भोक्ता और भोग्य का अभिमान है ये किसी में यदि हुआ यही चीज सुनी कर इन चीजों को छोड़ना बहुत बड़ी कठिन है। गोपियों ने साक्षात मुझे अपने पति को बंधु बांधव माता पिता को बंधुओं को और गृह के कार्यों से समस्त गृह के कार्यों देह और दैवी सब यहां तक कि सदाचार की सीमा आर्य पर आज्ञ पथ मैंने होता है आज्ञों के द्वारा जो पथ आचरण किया गया है जितने किंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे पति के प्रति स्त्री का कर्तव्य, किंतु आज्ञ पथ विशेष रूप से इसको भी छोड़ दिया और छोड़ करके किया गया खुद भी निर्मित ज्ञान सुखियां जिनका आज तक अन्वेषण कर रही है खोज कर रही है क्या मुकुंद की पदवी को उसको लाभ कर दिया मैंने ये सुखकाली के एक तरह से किया हो गई अतः उसको प्राप्त कर दिया है, भजन कर लिया है, भजन कर रही है और सुखियां क्या कर रही है सुखी मृविज्ञा सुखियां अभी तक खोज रही है और उसको इन्होंने पा लिया है और ये बतलाएंगे कि स्तुतियों को आज तक मिला कि नहीं कि मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं और उसको उन्होंने पा लिया है। ये गोविंद की पदवी ऐसी है जो गोपी स्तुतियां भी खोज रही आगे ये सब बतलाएंगे उपनिषद चरित्र के संबंध में बतलाएंगे जो विकसित नहीं है उनका गोपियों जैसा भाव तो वास्तव देते हैं किस रूप में वो तो मातृ खातृ उचित कहा ना माता की गति नहीं पाई उपनिषद करियों ने गोपियों का जो पूर्ण भाव है पाया कि नहीं पाया वो आगे देखो चिंता अथवा एक ही शब्द का अर्थ कर रहे हैं शब्द का तब अनुवृत्ति से कृष्ण की सेवा करती जो है जिस रूप में भजन किया था वो है मुकुंद पदवी। मुकुंद पदवी मैंने क्या, उसी का अलग अलग अर्थ कर। गोपियों ने कहा लिया उसको निश्चित और अभी तक पाया नहीं, वो खो गए अथवा गोचारण के लिए कृष्ण जब जा रहे हैं सायं प्रातः प्रजात प्रजतम सायं आविताक्त सायं गोभी सहित कवि को अष्ट निशांगदेन पूर्णम अपवाद प्रतिपूर्ण उपन्य जब कृष्ण रोज चारण के लिए सवेरे जाते हैं अपने वहां से चारण करके जब आते हैं तो उनके पक्ष में गोविंद के पक्ष में जब गोविंद उस पक्ष से आएंगे ये गोविंद पदवी का वहां पर क्या करती हैं बड़ी उत्सुकता से सब कुछ छोड़ करके भूल करके और वहां पर रास्ते के किनारे अगल बगल में खड़ी होकर के अपने आंखों से गोविंद का अर्चन करती हुई है। उस दृश्य को जिसने नहीं देखा जिस आंख में नहीं देखा उसके ऊपर में वज्र पड़े उस आंख की कोई आवश्यकता तो इसलिए कहते हैं उस समय में मार्ग में दोनों बड़ी उत्सुकता से खड़ी होकर के निहारती है पर देखते कि अब दूर इसने सुना सिंगा इसके बाद में सुना पहले सिंगा सुना फिर गायों की रंभा सुना और फिर देखा बैंग ध्वनि और इसके बाद में देखा कि गोपो ग्वालों को आ रहे हैं और उसमें आंखें लाखों में से एक को खोज रही है और उस कृष्ण को देखा मानो कृष्ण वही के गोपियों को देखने के लिए उत्सुक होकर के बस उधर आंख लगाए सब में मुखम सदे आवे हुआ मुकुंद पदवी कृष्ण पदवी मानी उनका पक्ष सब के तक और फिर करें अर्थात और भी गोविंद पद जिनके दर्शन के लिए